أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج جنوری 1981 کی دو تاریخ ہے. شام کے اندر پچھلے ماہ کے پچھلے سال کی 12 تاریخ کو ہوا اور میری ناسازی طبیعت کی وجہ سے دو درسوں کا ناغا ہو گیا. آج بھی میں ابھی بالکل معمول سے تو نہیں آیا لیکن جی نہ چاہا کہ یہ ناغوں کا سلسلہ دراز تر ہو جائے اس لیے حاضر ہو گیا ہوں. سنجید یادداشت کے لیے یہ عرض کر دوں کتاب کا درس میں سورہ الزمر کی آیت 49 سامنے پہلے آئی تھی. 39-49 موضوع یہ تھا جب سرمایہ داروں سے یہ پوچھا جائے کہ تم اتنا مال دولت جو ہے اس کو صرف اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر کیسے بیٹھ جاتے ہو, اس میں تو دوسروں کا بھی حصہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب ہم نے اپنے کسب و ہنر سے اپنی کاریگری سے کمایا ہے کسی اور کو کیا حق حاصل ہے اس میں کچھ لیے. اور قرآن کا بل ہے کتنا کن, بڑی بڑی چیز ہے. اور یہ ذہنیت ہے جو آدمیت کی جڑ ہے. قرآن کریم کے اجازات جانے شروع کیجئے تو اس کی سہولت اور نہایت ہی اور مزاج اتنے امیر کا خیال کر جاتے ہیں کہ بے ساخ کا زبان چاہیے آتا ہے کہ واقعی یہ چیز خدا کا کلام ہی ہے. قرآن میں قرآن نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے غریبی امیری اس زمانے میں بھی تھی لیکن اکنامک یا اقتصادیات یا معاشیات نے اس دور میں ایسی اہمیت حاصل نہیں کی. یہ اکنامکس عالمگیر پرابلم یا مسئلے کے اعتبار سے ہمارے دور میں آ کر یہ ہوئی ہے. اس نے سائنس کی حیثیت بھی ہمارے ہی دور میں آ کر اختیار کی. یہ عالمگیر پرابلم ہمارے دور میں آ کے بنی ہے. یہ جو ہمارا دور ہے اسے ایج آف اکنامکس کہتے ہیں, یعنی یہ دور ہی اقتصادیات کا ہے, معاشیات کا ہے. اور اب تو اس نے اتنی اہمیت اختیار کر لی ہے کہ دنیا کی سیاست اس کے تابع ہو گئی. سیاسی مسائل کا حل معاشی بنیادوں کے اوپر ڈھونڈا جاتا ہے, پیسہ بھی اس سے ہوتا ہے, حق بھی اسی سے کیا جاتا ہے. ہر قوم کی نگاہ دوسری قوم پر جھکتی ہے. کسی زمانے میں شاید وہ حوث سے حکمرانی ہوتی تھی جس کی نگاہ پہ یہ قومیں دوسری قوموں کو کرتی تھی. اب یہ سارا مسئلہ معاشی آتا ہے. فلاں سرزمین میں بہت سے ذخائر ہیں دولت کے, معدنیات کے, تیل کے. ہر بڑی قوم کو اس کی آوشیکتا ہے کہ وہ حصہ ہمارے پاس آ جائے. وہی مسئلہ اکنامکس کا. پرانے ٹیم میں اگر آپ دیکھیے بہت سے اگر غور و فکر سے دیکھیے تو آدھا قرآن جسے عام الفاظ میں روٹی کا بدلا کہتے ہیں بھرا پڑا. बिल वास्ता या बिला वास्ता उसकी तालीम गलत करने का, ये उस दौर की बात है या मस्जिद या रोटी का मसला या इकतियात, जैसा मैंने अभी किया है जहाँ कोई आलमगीर प्रॉब्लम थी ना, इसने किसी फैंसी हैसियत को तैयार की थी और इसे आधा कुरान क़यामत के लिए पूरी नौ इंसानी के लिए ज़ाब्ता या राय वो इकोनॉमिक्स को पढ़नी है। वो ये भी बताता है कि ये प्रॉब्लम क्यों बनती है, ये भी बताता है कि प्रॉब्लम दर हकीकत है ही नहीं, इंसानों की बनाई हुई प्रॉब्लम है। वो ये भी बताता है कि इससे फिर फसाद आदमियत के कितने दोषे उभरते हैं, और फिर वो ये भी बताता है कि इसका हल क्या है। इस दौर में जिन्हें दिलचस्पी है इकोनॉमिक से, वो अगर एक तरफ इकोनॉमिक का मुताला करें और इस निगाह से दूसरी तरफ कुरान को देखें, तो कुरान की अजमत निकलकर सामने आ जाती है कि आज दुनिया भर से इकोनॉमिक बड़ी बड़ी उनकी सोसाइटियां, उनकी रंजमने, यूनिवर्सिटियां, हुकूमतों के इशारे इकोनॉमिक्स के मसाइल के हल में मसरूफ है। और जो 500 डिस्कस करते हैं गौर किया जाए तो कुरान के अंदर वो मिलते हैं। आज उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा, लेकिन जिस तरफ उनकी निगाह उठ रही है वो वही है जो दस्तूर कुरान ने बताया था उस दौर में। कहा उसने ये कि इंसान बड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस पर आएगा, उसने पहाड़ की घाटी पर चढ़ने की चुकी से व्यायाम किया कि ये पहाड़ की घाटी पर चढ़ने वाली बात है, भाग के नहीं इस तरफ आया जाएगा, कदम कदम सब भी खड़ा हो जाएगा, मुड़के पीछे भी देखेगा तो आएगा भी वो, फिर आगे कदम उठाएगा। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का मुराद है, लेकिन उसने जो इसके लिए इलाज बताया वो पहाड़ की चोटी भी चढ़ने का नहीं है। ये इन प्रॉब्लम्स का हल बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं, कैसे ये इंसान की अपनी जहनीत का पैदा करना मसला है, इंसान की जहनीत की तब्दीली से ये मसला हल हो सकेगा। हमारे यहाँ तो मैंने जैसा हजार बरस भी ऊपर हो चुके थे गौरव फिक्र के दरवाजे बंद कर दिए गए, रिजक का मसला सामने आया तो अल्लाह राजिक है, वो रजाक है, रिजक उसके हाथ में है, जिसे चाहे वो जितना जी चाहे दे, जिसे चाहे गरीब कर दे, जिसे चाहे अमीर कर दे, भूखा भी वही मारता है, देता भी वही है, इसके साथ किसी किस्म की घर से शिकायत जुबान पर माना माल अल्लाह खुदा पर एतराज करने की बात है, उसकी तकसीम के खिलाफ ये शिकवा शिकायत है, ये हजार बरस से ये एतराज चले आ रहे और ये सारे आधार के सजाया प्रश्नों के पैदा कर सकते। مذہب کے راستے سے یہ عقیدہ پھیلایا گیا تاکہ غریب آدمی کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہیں کہ یہ ہماری محنت کا سارا محاصر یہ لوٹ کر کیوں نہیں جاتے. جب عقیدہ یہ ہو کہ یہ کون ہے لوٹ کر جانے والے, یہ تو خدا کی تقسیم ہے, وہ لوٹ رہے ہیں, یہ تم سے چھین سے نہیں ہے, خدا کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں اتنا ہی ملے. اور پھر غریبی کی روزیار, اس کی خدا کی رحمتیں غریبوں کے اوپر, سب درویش غریب, اولیاء اللہ غریب, صحابہ کرام غریب, اور آخرت میں جا کے آخرت میں جا کے جنت میں سارے یہ غریب جانے والے, تو وہاں جا کے یہ سب کچھ ملتا ہے. ان کو سناتے رہے کہ یہ چیز خدا کی طے کرتا ہے, اس لیے اس کے خلاف ہر سے شکایت نہیں لانی چاہیے. ہمارے اس دور میں بھی دنیا کی یہ پاور جو آج بھی پھیلاتی ہیں وہ ساری کیپیٹلسٹک سسٹم والی ہے, نظام سرمایہ داری کی حامل. آواز اٹھی تھی, آواز اٹھی تھی, خاص بنیاد اس کی نہیں تھی, فریق کار غلط تھا, یعنی روس کی آواز غلط تھی ہے. آواز یہ تھی عبادت کی تقسیم آپ کو نہ کرنی چاہیے, ملکیت آپ کسی کو نہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ آواز تو صحیح اٹھی تھی لیکن اس کی بنیاد نہیں تھی, اس لیے اس کا کام رہ جانا تو فکری امر تھا. بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ اس آواز کے خلاف دنیا بھر کی یہ ساری سرمایہ دارانہ سلطنتیں اٹھی. انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کا ایک بین دفتار ہے مراکو سے لے کے انڈیا انڈونیشیا تک, بڑی افرادی قوت, بڑی اونچی مملکتیں. تو انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ کہیں اس آواز سے پیچھے چلے گئے رشیا پر تو یہ تو ہمارا سفر جان جائے. تو انہوں نے جو اس کے خلاف ایک اس سازش کو ایک سازش کی اس آواز روکنے کے لیے, آپ آواز کو شاید بات ہو یہ فکر, بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر, آؤ خدا پرستو, ان خدا کے انکار کرنے والوں کو مقابلہ کریں. جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا, آؤ خدا کو رکھو. یعنی مسئلہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرمایہ داری کا نظام ہے ہمارا, یہ اشتراکی نظام ہے, آؤ اس کے خلاف ہمارے ساتھ. یہ تو اس قدر یہ مسئلہ ہے سرمایہ داری کا, نفرتی کیا ہوا تھا وہ یہ نام بھی نہیں لیتے. انہوں نے کہا یہ تھا کہ آؤ خدا ترست ہو, ان منکرین خدا کا اس الحاد کا اس قبول کو مقابلہ کریں. اس کی بہن اسی بات کیونکہ خدا ترست لکھے ان کو سکھایا یہ کیا تھا کہ یہ سارا قصہ خدا کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے یہ سمجھا تھا اس سیاست میں مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس کو معافی مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہیے, اس کو دوسری مسئلہ رکھنا چاہیے. وہ خلاف سستوں کے آگے انہوں نے آواز دی تھی. انہوں نے تو کہا تھا ورچوئل آف دی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر, یو وانٹ ڈو اینی تھنگ بٹ یور چین, اور دنیا کے محنت کرو اکٹھے ہو جاؤ, اس جزیرے میں تمہارا کچھ اور نقصان نہیں ہوگا سوائے اس کے تمہاری غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. وہ ایک سلوگن تھا محنت کشوں کے لیے. انہوں نے یہ سلوگن دیا تھا کیپیٹلسٹک سسٹم والی فرمایا دارانہ مملکتوں نے, انہوں نے خدا کے نام پہ اپیل کی تھی مسلمان بتا سکنے کی. اتنی گہری سازش ہوتی ہے لوگوں کی. लेकिन इसके बावजूद इकोनॉमिक सफलता जो था ये जोर पर पड़ता गया। और देखिए मनी का सफर जहाँ गैर मुनफ हिंदुस्तान में भी मैंने ये बात जरा उठाई थी रोटी का मतलब, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तस्वीर के बाद तो मैंने ही इस मसले को उठाया था। ठीक है, अलामा इकबाल के कलाम में ये चीजें मिलती है, उनका अपना अंदाज है। पुराने दीन की रोशनी में माशियात का मतलब रोटी का मसला जिसे कहा था, मैंने इससे उठाया। और कम्युनिज्म के मुकाबले में, सरमायादारी के मुकाबले में तो इस नाम को पेश किया जाए तो चंद लफ्जों में खत्म हो जाती है सरमायादारी। कम्युनिज्म के भी मुकाबले में मैंने सरमायादारी और कम्युनिज्म दोनों के मुकाबले में कुरान का माशी निजाम पेश किया, ग्रामीण शाह किए एक को भाई उसकोवानी की रोटी का मतलब वो भी मुल्कों को उसके बदले लगे थे ना, उसमें ये भी चीज थी साहब ये अब इस्लाम रूहानियत खुदा प्रस्ती सारा कुछ जो है ये सिमट सिमट आके क्या क्या रोटी से बदला, तुम्हें रोटी तो है ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं है दूसरे खाते हैं तुम खाते हो, उनसे पूछो ना सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और उसके बावजूद उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, रोटी का मतलब उनसे पूछो, लेकिन उसके जवाब तो पता था। उसके बाद जो मेरी किताब छाया हुई मजान रघुवीर, आप बचिए मैं कुछ अच्छी रास्ता बयान नहीं कर रहा, एक बड़ी अहम चीज है जो आपके सामने आने वाली है, ये उसकी तमहीद है या उसको का आरोप है। निजामियत में पहली बार कुरान करीम का माशी निजाम मैंने पेश किया, इसलिए था कि उसे कम्युनिज्म कह दिया, बड़ी आसानी की बात, कोई शब्द नहीं जो चाहे के गरीब को रोटी पीनी चाहिए कम्युनिस्ट पर, कम्युनिस्ट कहा मुर्दा हुआ। कभी तो कोई क्योंकि भवानी ने श्रीयत इनके यहाँ से जो थे नाफिल नहीं थे और मुर्दा हुआ और बस अभी कुशलता की बात पहुंच गई थी, बड़ी मुखालफत हुई मेरी उस आवाज की भी, लेकिन बहरहाल मैं बात बात करता उस वक्त जब कुरान की रूह से अपनी बसीरत के मुताबिक मुझे यकीन हासिल हो जाता है कि ये हकीकत है। और जब ये कैफियत हो जाए इंसान की कुरान करीम की रूह से उसका यकीन हो जाए तो उससे पीछे हटना तो कुरान को छोड़ देना होता है। बड़ी मुखालफत उसकी होती चली गई, मैं मुश्किल उसके ऊपर डटा रहा, बेशुमार मजामीन मैंने उसके ऊपर सवालात लिखे, तकारीर की, सवालात लिए, कुरान का माशी निजाम जो था उसको पेश कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता इस 25 साल के अरसे में ये चीज फला में फैलती गई, ये वो चीज है जिससे ये कम्युनिस्ट जब मार्क्सिज्म की रूस वो हिस्टोरिकल कहते हैं, लेकिन ये इसमें शक्ति का लफ्ज सबसे का है, होता है ऐसी वाजिब चीज जो होके रहे जो अटल हो जिसको बचा ना जा सके, ये चीज थी ये तो मैंने नहीं कहा था। कुरान ने जिस चीज को कायनाती खुशी को कहा है मलाइका की साई, वो जमाने के तकाजे होते हैं, जिस दौर में जमाने के तकाजे इस तरह से बढ़े رفتہ رفتہ نظام سرمایہ داری سارے تین گاہوں کے مقابلے کا روزگار آ گیا. یعنی اتنی سی چیز کو اب میں یہ نہیں لے رہا قرآن کے میں نے لکھی نظام ربو میں تو یہ کافی کیا قرآن کی آواز تھی زمانے کے تقاضوں نے اتنا یہ کیا کہ نظام سرمایہ داری یا کیپیٹلسٹک سسٹم جو ہے وہ ہمارے چیزوں میں کافی روزگار آ گیا. یہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ اس کا ہو گیا. کوئی رفاقت سے نہیں کرتا. بڑی بڑی سرمایہ دارانہ سلطنت اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کہنے لگ گئی ہیں. ایسی مطلب کہتے ہیں جن کا مقصد عوام کی بہبود ہو جہاں تک وہ آ گئی ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز جو تھی وہ میری ہی ان کوششوں تک محدود تھی لیکن آواز اٹھ رہی تھی پھیل رہی تھی پائیداری قوت سے اب میں آؤں گا وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی اور پھیلا رہی تھی. اور میں اس چیز کے ساتھ اپنے چیز پہ بھی قائم تھا اور بڑھتا بھی چلا جا رہا تھا. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ آخر الامر اسی نظام میں یوزے رہو علم جن کل نہیں. اس نظام میں ہر انسانوں کے ہر بلا پردہ نظام پر واجب آ کر رہنا ہے. میرا یہ ایمان ہے. سارے چلتا جاتا تھا لیکن جیسا میں نے عرض کیا مذہب پرست طبقے کی دوسرے کو مخالفت کی تھی حکومتوں کی طرف سے بھی بار بار مخالفت تھی. ہمارے یہاں تو نظام سرمایہ داری ہے وہ بھی چیز کہیں سے یہ نظر نہیں مجھے آتا تھا کہ یہ جو وسط گوشے ہیں وہاں سبھی اس کی تائید بھی ہو سکے گی. میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ جب انتہائی تباہی آئے گی اس نظام سرمایہ داری کے اٹھنے کی تو اسی کے ساتھ ہم بھی پسیں گے کیونکہ یہاں تو اس تصور کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہوتا. لیکن ابھی حال ہی میں ایک ایسی آواز اٹھی ہے کہ جس نے اس میرے یقین کو تو ایمان تک پہنچا دیا اور یہاں ایک نظر آیا کہ سرکار میں ایک انقلابی لہر برپا ہوئی ہے. یہ آواز کہاں سے اٹھی؟ گزشتہ اپریل میں حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی مقرر کی. اس کا نام تھا کمیٹی آن اسلامائزیشن. اسلامائزیشن آف اکنامکس. اقتصادیات کو یہ اسلامائزیشن کا لفظ آج کل ایک عام چل پڑا ہے. ایک اصطلاح ہوتا ہوئی ہے. بڑا غلط مفہوم ہے اس چیز کا. اسلامائزیشن کے معنی ایک نظام کفر کا ایک نظام ہے کہا جائے اسلامائزیشن اس کو اسلامی بنانا. کفر کے نظام کو اسلامی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسلامی نظام میں بدل سکتے ہیں یا اس کی جگہ اسلامی نظام سکتے ہیں. اسلامائزیشن کی طرف اگر آپ دیں گے تو اس کے معنی ہوگا آپ کہیں گے نا کہ شیو جی مہاراج جو ہیں ان سے جو تھا اسلامائزیشن اس کی کی جائے اس کی کی جائے وہ تو اس کی جگہ خواہ آئیں گے اور وہ ختم ہوگا. جہاں جہاں بات ہے اسلام اس کی جگہ لے گا اس کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا. شیو جی کو مسلمان کیا کریں گے آپ؟ بہرحال سے ایک پل پڑی ہے ہمارے یہاں ایک روش سوشل میں نیشنلائزیشن کا ایک ہمارے یہاں اس طرح آئی تھی نا
परसों
में ये भी एक नई सलाह है जो आजकल आई हुई है, इस्लामाइजेशन, इनको इस्लामी बनाना। इस्लाम मुकाबला ही नहीं कर सकता किसी के साथ, जवान साजी हो ही नहीं सकती। ये तो गैर इस्लामी निजाम को जड़ से उखेड़ से उसकी जगह इस्लामी निजाम काम किया जाएगा, उसको तो निशानपुर में बाकी नहीं रहेगा। उस कुफर के निजाम को मुसलमान बनाना, कमेटी ये उन्होंने मुकर्रर की। उस कमेटी ने अप्रैल में वो मुकर्रर की, मई में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी मुश्तमल थी इन हालात पर, प्रोफेसर सैयद नवाब हैदर नकवी, डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में सेक्टर के लिए क्या चीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट के यहाँ की ये चीज है, एक ये उनके चेयरमैन थे, मिस्टर एच यू जेग फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस्लामाबाद, एक मेंबर प्रोफेसर रफीक अहमद प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर मेंबर, और प्रोफेसर मियां एम नजीर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स पेशावर यूनिवर्सिटी मेंबर। अप्रैल में कमेटी में मुकर्रर हुई, मई में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। वो रिपोर्ट जो थी वो पिछले महीनों तक बाहर नहीं आई थी। मुजक्का नवंबर में उसके मुताबिक अखबार में चर्चा हुआ था, तो वो चूंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं थी, ना ही ये था कि वो ऑफिशियल यूज के लिए है, आम पब्लिक डॉक्यूमेंट था। वो रिपोर्ट मैंने बताई, आप रखिए ये जो जिस किस्म की बीमारी है, दांतों की लकीरें होती हैं उसमें बड़ी सख्त होती है, ये भी वो लकीरें बाकी है उस फ्लू की मैं रहा हूँ, तो इससे मैं माद रखता हूँ, अच्छा नहीं लगता ये। शुक्रिया। बड़ी मुख्य वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का पहला उसके वो जो मसला होता है वो यूँ किए कि वो आमतौर गिफ्ट होता है, उसको बड़े गली और दूरों के बाद में पहले सतह के ऊपर आयत कुरानी है, मीरा का समावाद बदर, और उसके नीचे लिखा हुआ है इज्जत की मिल्कियत किसी को इजाजत नहीं। पहला खफा उसके मैं बैठ गया, कहा की था कि वो वही रिपोर्ट है, कुछ और बता रहा हूँ, वही रिपोर्ट थी और नहीं कुछ पढ़ रहा था मैं। और उसके बाद लिखा हुआ था कि किसानी इकतियात या माशियात के मुतलक तफासिल तो बहुत सी आएंगी, लिखी जाएंगी, उसको जो नुकता है माशरा है वो यही आयत है। राजी में लिखी है किसी चीज की किसी इंसान की नहीं हो सकती, और अगले पसे पे था इधर से यही ना आप समझिए कि सरमायादारी का निजाम वो खत्म हुआ क्योंकि जाती मिल्कियत नहीं हो सकती, उसमें यह था कि जाती मिल्कियत स्टेट या मुनिसिपलिटी भी नहीं हो सकती, ये कम्युनिज्म हो जाएगी, ये भी गलत है। मिल्कियत तो इसमें सुखदाती रहेगी, मुनिसिपलिटी को इसका इंतजाम करना हो, और अगली शिफ्ट ये थी इंतजाम किस मकसद के लिए करना होगा कि माशरे के हर फर्द को जरूरियात के हम पहुँच रहे, अगर आप अदालत ने मेरी किताब निजाम रुबूबियत देखी है तो आपको मालूम होगा कि उसके हर चैप्टर के उनवान आज हैं ये। इनका भी इस्लामी मंगलत इस्लामी होती उस वक्त है जब से उस मंगलत के अंदर कोई फर्म जरूरी जिंदगी से मारूम न रहे। उसने कहा कि ये जाति मिल्कियत के अंदर जमीन ही नहीं, हम ये कहते दौलत जिसे आप कहते हैं वो भी उसमें आती है। आगे उससे ये है इसकी तकसीम में लाओ कैसे होगी, उसका अनुमान है कि ये निजाम फजल और एहसान की कुरानी आयत पर मबनी है। फजल के माने ये है बर्तन में जितना ये मतलब पानी गिलास में आ गया है जरूरत के मुताबिक उतना ही है, इसमें और डाल दिया जाए तो वो करेगा, ज्यादा जरूरत के अंदर नहीं रहेगा, इस बाहर जाएगा। हाँ ये अदल है, जाएगा कहाँ, जहाँ पानी नहीं है निश्चित में ये वहाँ जाएगा तो उसको बाहर देगा, ये एहसान है। कहाँ आके दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, मैं क्या पेश कर रहा हूँ, मैं वो रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। कहा से ये तजुर्ब की बात नजर आएगी तो ये लेवल बराबर हो जाएगा। तो ये जो सुबह है ये अमीर और गरीब बावत के उन्होंने कहा कि ये इसी प्लान है, ये खुदा के मुकर्रर करदा पैदा करदा नहीं है, अमीर और गरीब के सुबह है ये इंसानों के पैदा करदा है, इन्हीं सरमायेदारों के पैदा करदा है। उदासन को अमीर पैदा करता है ना गरीब पैदा करता है। इस्लाम के माशी निजाम में या इस्लामी मंसब के अंदर अमीर और गरीब के तबकात खत्म हो जाएंगे। सुन रहे हैं आपकी आवाज कहाँ से उठ रही है? उन्होंने कहा कि ये आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, आगे इंटरेस्ट का तर्जमा शुरू कर दिया और फिर इसमें बात शुरू हो गई कौन सा सूद हलाल है कौन सा सूद हराम है, इसको यूं ने यूं कर दिया जाए तो फिर जायज हो जाता है। कि ये सूद का सुलभ फारसी का है, कुरान का जो व्यवहार है नज़ूल कुरान के जमाने में ये कैपिटलिज्म की इतना दुनिया में नहीं थी। पुराने करीम ने कैपिटलिज्म के लिए रिबा की सलाह इस्तेमाल की है, रिबा के नाने कैपिटलिस्टिक सिस्टम। निजाम सरमायादारी को कायम रखने कोशिश करना कि उसमें से रिबा खत्म हो जाए, इसका ये है कि शेर चिली की बातें अंग्रेजी में डाउन पिक रॉट होता है, लिखा है कि ये कुछ कोशिश के साथ ये सूद नहीं बल्कि वो मुनाफे में से आप कहते हैं मुनाफे में से आता है इंटरेस्ट पार्टनरशिप ये है कि इसके नाम ही नहीं बदला बल्कि ये खतरनाक किस्म की कैपिटलिज्म की एक नई बुनियाद डाल दी गई है। इंडिया की फिर भी पिछड़ा हो जितनी तरह ज्यादा कोई देता था महसूस होता था कि इतना दे गया तो आई मत जा सकती ज्यादा नहीं हो सकेगा। लेकिन मुनाफे के अंदर हिस्सा तो आप ऑफिस में समझ सकते हैं कि फोटो जरा कागजों से कितना होता है और आगे कहा गया है कि साहब ये इलाज जो है ये खाना गरीबी का क्या ये 2.5% की ज़कात है। वो कहते हैं कि ये जरूर करना चाहिए इससे कि मसला हल हो जाएगा। ये सोचने वाले इकोनॉमिस्ट की एकदम बेसिक लागत नहीं कहा ये ज़कात 2.5% का नाम है नहीं ये तो कुरान का जो माशी निजाम का मखसूस मफहूम है नशो नुमा देना ये तो उसकी एक सिंबल सी चीज है जिस प्रकार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा हम तो ये समझे तो ये है निजाम इस्लाम का जो इस्लामाइजेशन का जा रहा है ये इकोनॉमिक्स है। मैं उसके मोटे मोटे जो अनुमान है वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इन खतूत के ऊपर अक्सर नौ तकसीम किया जाएगा इस तमाम चीजों को फिर ये निजाम बदलते। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से उस मुंतहा तक पहुँचना है एक दिन में नहीं पहुँचा जाएगा कदम तो कदम पहुँचा जाएगा। इस अबूरी दौर के ये लिए ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे जिनमें जब तक के वानी लाया जाएगा कुरान में भी अबूरी दौर के लिए किए हुए हैं कवानीन इस तरह से लाया जाएगा लेकिन इस मुंतहा को पहले सामने रख के मुकर्रर करके फिर कदम उठाया जाएगा और हर कदम ये देखा जाएगा कि उस रूप रहा है या नहीं। सारी जमाने में कुछ एक पता ये भी हुआ कि मुझे फुर्सत मिल गई मजबूरन से कह रहा तो मैंने उस रिपोर्ट को तजिया किया तो मैंने ये बताया कि कुरान का निजाम माशी जो है उसके सेलियन फीचर जो है अहम उन्मानात उसकी क्या है मैंने इन्हें निजाम रबूबियत में किस तरह से लिखा था और उसके बाद मैंने फिर ये जो रिपोर्ट है इस तरह तजिया करके और उस रिपोर्ट को सामने वो दिया। मैंने अर्ज किया ना कि वो रिपोर्ट तो नई में शाया हुई थी उसको नहीं, नहीं अभी तक आई थी मालूम नहीं इसको आम क्यों नहीं किया गया लेकिन ये ऐसी चीज थी जिसकी अहमियत इतनी थी मेरे नजदीक पुराने करीम के रूह से इसका आम करना में आज जरूरी था राज्य उसके लिए ये कंप्लीट काफी है करता है छोला सफे का जिसका अनुमान मैंने ये लिखा था कि सुनिए कुरान की आवाज कहाँ से उठ रही है ये परफेक्ट बाहर मौजूद है। इसे आप गौर से पढ़ेंगे तो आपके सामने ये बात आएगी। मैंने तो अभी कहा था कि ये कुछ कायनाती कुवतें हैं, सुलेमाने की तकाजे हैं, जिनकी वजह से ये कुछ हो रहा है। भी नहीं ये आकर सकता कि हुकूमत की तरफ से कमेटी बैठी है, मौजूदा निजाम जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम हमारे यहाँ का, उसमें कुछ इस्लामाइजेशन की बात की जाए और वो कमेटी ये रिपोर्ट पेश करती है। मुझे साफ ये बात आई, अल्लाह तआला का ये फजल व करम है कि मैंने जो बात 25 साल पहले कही थी ऐसा चला आ रहा था, कोई सेकंड पर ज्यादा भी नजर नहीं आ रहा था। हम खुद सवाल हुकूमत से बयान ही वही चीज जो है उनकी एक खसूसी कमेटी की रिपोर्ट की शक्ल में सामने आई है। अब वही हर्षजनों सबकी जुबान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है? कुरान की बात पाठ होता है, मुझे पता नहीं दूसरों का ये है, बुरी खूबत की जरूरत होती है, इतनी जरूरत होती है। बस काट दे और उसके बाद के इस्तेमाल के साथ उसकी ऊपर नजर आए होंगे मलाएगा तो नजूर शुरू हो जाता है उसको। मैं बारगाह-ए-अज़्ज़ी में तर्बत से भी हूँ कि उसने मेरी बड़ी नाकाम सी कोशिशों को मेरी जिंदगी में ही जितना सच्चा कबूलियत रख दिया है। उन्होंने भी ये लिखा ये है कि हमने ये एजेंडा भी पेश किया है हुकूमत के सामने कि वो आप इस एजेंडे के आइटम को देखे, खुद देखे इसके अमल तेरा किस तरह से हुआ जाएगा। यूं वो बात है जो आगे चलेगी, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट से हुकूमत के डॉक्यूमेंट के अंदर ये एजेंडा आ गया है कि जिसे इस्लामी निजाम की कुतादियात को कहा जाएगा वो ये होगा। तफासील उन्होंने कहा है कि आप खुद वर्कआउट कीजिए बैठ के कैसे करना है, लेकिन मसूल एन ये होगा जो हमने बताया है आपको, और इसमें से हर शिक्षक उन्होंने तजवीज की है उसके नीचे कुरान की वो आयत छोड़ की है जो मैंने निजाम रुबूबियत में ली कुरान की आयत दी है क्योंकि अंग्रेजी में है रिपोर्ट, वही कुरान की आयतें हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि हुकूमत में से मेरा ख्याल ये है कि शायद पहली रिपोर्ट है जिसमें कुरान की आयतें भी कमी आई और हर शिख के नीचे कुरान की आयत। ये तो रही रिपोर्ट की बात, मैंने अर्ज किया था कि ये इत्तेफाक करता है कि आखिरी 10 से 12 सितंबर का था उसमें जेरे नजर आए थी ये थी कि जब तक इकतदी मसले का हल नहीं होगा इंसानियत अपने पांच भी नहीं हो सकेगी। और कुरान करीम ने निजाम सरमाया गारी की बुनियाद थी जो उनके यहाँ की दलील थी, आज भी वही दलील दी जाती है। वाली बात है ना निजाम रुबूबियत निजाम सरमाया गारी में, उसको दलील ये देते हैं कि एक शख्स अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनत से, अपनी हुनरमंदी से, अपनी कारीगरी से जितना नीचा है तुम्हारे और वो तो आ गया तो दूसरा उसमें कभी नहीं रह सकता, नॉन इंटरफियरेंस होता है ना उसके अंदर। पुराने क्रीम ने ये कहा था गाली है या कृष्णा तुम जी वाले मन सोचिए क्या कहते हैं कुरान हेरा कृष्णा तुम से दौलत के अंबार से इतना जमीनों के इतने बड़े रकबे उतरे। उसने कहा ये तो उसके आगे महसूस चले सफल के ये नियत है या कितना तुम आज हुकूमत से ऐवान से ये आवाज उठती है हेरा कितना ये है असल पता बिरादरीत की क्या है। जहां तक पहुंचने के बाद हम आइए कुरान की तरफ। ये सारा निजाम गिरा के उसने ये कहा था जायदारी के निजाम में आहिस्ता आहिस्ता ये जो अस्सी नब्बे फीसद आबादी होती है इंसानों की गरीबों की आबादी वो ताकत से रूस बाहर इतनी महंगाई चीजों की गर्मों सब के अंदर अब थी आहिस्ता आहिस्ता वो इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि वो मायूस हो जाते हैं। आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ भी खूब हारे काम के लिए जो मिलेगा वो कहेगा कि फिर पाकिस्तान का की बने जाएगी फाइनल की होगा जी की मायूसी की आवाजें हैं। मायूस तो कहते हैं जिसको सहराए लखो सहरा के अंदर क्या बातचीत कौन की जिसको मिटाने राह ना मिले जिसको रास्ता न मिले वहां जानने भी ये कहा है मायूस वो होता है मुजिल जो सरगर्मा हो रास्ते रास्ते मिले नहीं उसको रास्ता अगर सामने हो और मालूम हो झुका हुआ हो शर्मांदा हो सुखा हो कोई भी मुश्किल हो वो मायूस नहीं होता वो मुस्कुरात पर काबू पाने की तदबीरें सोचता है। ये सारा कुछ बिगाड़ने के बाद किस तरह से इन लोगों ने हृदय के चश्मों के ऊपर ये शाम की तरह बैठे हुए होते हैं और इतनी बड़ी आबादी जो है खुदा के बंदों की उनको दो वक्त का खाना नहीं मिलता ये तफावत वहां तक बढ़ता है 25 दिसंबर से नवाए वर्ष में एक छोटी सी खबर है। खबर ये है यही लालगंज साहिबाल जिले के अंदर के एक जिम्मेदार उसका एक बाघ चोरी हो गया जिसकी कीमत 12 लाख रुपया थी। कहा कि ये वो कैसे पड़ोसी था 12 लाख रुपए उसमें लिखा हुआ था कि ये दरबार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे दरवाजा खुलता है इसी मुहर्रम में ज्यादा नशीन है उन्होंने 12.5 लाख रुपया इसकी कीमत पेशकश की थी और उसने नहीं दी। इस दिसंबर का दवाए वक्त के आखिरी खबर के ऊपर इतनी सी ये खबर है रखी हुई उधर तो इतनी सी है बल है या कितना तुम कुरान कहता है वो जो जिसके दरवाजे में जाने वाले होते हैं उन्हें आप देखिए कान झांपने को थोड़ा नहीं सर्दी में उनके पास होता और वो अपनी अकीदत यानी जो झाड़त खड़ी हुई होती है उनके लिए जो वहां जाके वो देते हैं उसकी कैफियत बाकी की आप खुद लगा लीजिए दादा मैं क्या अंदाजा लगाऊं मैं किसी एक बात बता रहा हूँ कि वो ज्यादा नसीब साहब 12.5 लाख रुपया एक माल की कीमत पेशकश करते हैं आप सोचिए कि इस मुकाम के ऊपर ये गरीब ये अस्सी मुझे थी सर जिनसे अरसा हयात इतना कम हो जाता है हो चुका होता है वो किस तरह मायूसी के आदम में पहुँचते हैं लेकिन कुरान है खुल जाए तो ऐसे लोगों का पहरा में जिसको जिसको रास्ता नहीं मिलता आवाज देता है दूर से बुरा नहीं मैं बताता हूँ कौन सा रास्ता है जब इसने ये कहा तो मैंने कहा क्या चीज कहाँ से रास्ते की आवाज कहाँ से रही है आयुष ना हो तो फिर कुरान के अल्फाज है ये ठीक है इतना हुआ लाल कुछ हिंदुस्त ठीक किया जाता है जो अपने खिलाफ याद की कर बैठे हैं कि बुनियाद जरा देखते हैं कुरान के अल्फाज की बुनियाद देखनी चाहिए जो खेतों को खराब करते हैं ना जिम्मेदार उन्हें अच्छे पानी चलाते हैं जिंदारियों में सुधरता है उस पंजाबी आड़ कहने में उन्होंने वो तो नालियां नहीं हमारे यहाँ होती थी वो कच्ची नालियां होती थी तो उसमें अक्सर उद्देश्य ये होता था कि रास्ते में ही वो कच्ची थी वो तो आड़ होती थी इधर से जरा मिट्टी हटी तो वो पानी इधर पर बह गया उधर बह गया यानी जायज से उस खेत में पहुंचे जहाँ से पैदा होना है वो रास्ते में से ही इधर और इधर बैठे चला गया इस रास्ते किसे वो सो 12.5 लाख गरीबों और कमजोरों के बच्चों की फसलें हरी होनी थी रास्ते में बैठ गया क्या समझना है कहा ये निजाम पैदा हो जाए वो पानी खेती तक न पहुँचे जहाँ उसने कुछ कुछ जूस पूछना है ये नॉन कंस्ट्रक्शन है ना ये सारी जो खेतें आपने देखी है पानी खेती तक नहीं पहुँच रहा रास्ते में बह रहा है आप यहाँ तक पहुँच चुके हुए हो तुम्हें चाहिए क्या मैंने कहा ना कि अहमद के माने होता है समान नशो मजा जो बुरा मजदूम आगरा में दे इंसान के हाथ से जो मिलता है वो रहमत नहीं होता ये वो समान होता है जो रहने बागर में जमीन को बच्चे को मिलता है वहीं से चला गया रहमत ये जो है उसके माने होते किसी का पानी रोक देना क्या क्या बात है एक एक वक्त में क्या कुछ ऐसा चला जा रहा है क्या वो कि जिनसे पानी रोक लिए और जिन्होंने वो पानी रोके ये नहीं कि वो खेती तक पहुंचा है, वो रास्ते में जाने शुरू हो गए 12.5 लाख। और यहाँ तक भी ये भी है आयुष मत हो रास्ता हम बताएंगे। ये लग्न से इसकी सबकी जो है कोई बात नहीं, इंदिरा या फिर तो रू सकनी हम तो माने शास्त्र से नहीं तो समझ रहे हो कि सब कोई बात नहीं करते सारों के समान ही नहीं है उन्होंने समान है सब इन्हू कवल कपूर और रहीम भी वो पूछगा हमारे में जो बता भी देगा उसने कहा ये है फिर नामक से मायूस कहा है लेकिन रास्ता नहीं है रास्ता ना मिले और वहां खड़ा हो इंसान मायूस कि कहां जाऊं रास्ते की निशानदेही करना ये है मायूसी से निकालना। सिमरन आपको पता है हमारे यहाँ फिर हो आयुष मत हो गई कहा बोलते जितने जितना गुना करने चले गए आयुष की छुट है तो सब बचते बचपन में हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वायर आया था कौन क्या चाहे गुना आना बहुत जी भाई जब ना करो तो गुनाह न करोगे तो खुदा की जो बख्शिश और मुकद्दरत की शिक्षा है वो तुम्हें खाद कैसे आएगी खुदा से नहीं टिकेगा। गुनाह करो जी भाई के बस एक दूसरी पहले एक दूसरी बार हर जल धारायण जल दियाम जो है तो समंदर आपके मिलेंगे प्रसाद की तरफ आगे ले जाएंगे खुदा की रहमत से मांगे उस मतलब इस मुकाम से वो कहता है रास्ते ही की तलाश है ना रास्ते नहीं मिलता इसलिए मांगी उस कौन बताए अनिर वो इरादा से तुम असले मुहू इंसानों के बनाए हुए निजाम जितने हैं उनसे मुंह रखो बनावा होता है जाके सेहत की मिट्टी आती है ना अपने बच्चे की तरफ यू आओ एक एक चीज का मुंह चूमो वहां से एक रक्त रोज शहद का अपने मुंह में हजारों लाखों की तादाद में जो मिट्टी हुई होती है एक एक जगह से ये चूसो रास्ते में खुद ही ना खा जाओ आप इन्हें कुछ दिन करना शुरू कर दो सच्चे में आओ और ये जो जाती है ना ये पक्षियाँ ये अजीब निजाम है ये तो मुकाबले के काबिल है इससे दुश्मन की काबिल ही नहीं है ये निजाम है ये सहज मुक्ति का जिसे जाती है इस समाज के आर से वो उसमें से ये नहीं के रास्ते में से उन्हें कुछ लेती है आके भी वो सारे का सारा वहां जमा करके बैठ जाती है वहां एक बर्तन होता है जिसको पीन जाते वो सबसे बच्चे बच्चों को देती उनकी परवरिश के बाद जो घाटे है ना वो मोम वाला शायद होता है वो इनसे हिस्से में आता है इसको मेहनत करके लाती है अरे वो फिलहाल सबके को भी देखी जिसने निजाम रबूबियत दिया है सिर्फ आओ ही नहीं रिपोर्ट ही ना कुछ लिखो वह असले मुंह राहू आपने निजाम को सुना नहीं करो इसके सामने सामने सरे तस्वीर हम करो किसे अख्तियार करो और फिर वार्निंग ये तो सुना कि मायूस मत हो ये है उसका बीज का मेन कब ले या कुमार वो सुन मा सुन करूँ مجھے دیکھو تباہی آ جائے کہ تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے. ہم نے تباہیاں یہ عذاب یہ ساری چیزیں قیامت پہ اٹھا رکھا. یہ جو عذاب کہہ رہے ہیں یہ تو عذاب وہی ہے جو ان قوموں کے اوپر آتا ہے جہاں ان چھوٹی ہے سب تین چھوٹی انسروں. اس سے پہلے ہر سب کو قوم میں جو بڑی بڑی سرمایا دار ہے وہ پھینکتی رہتی ہیں شراب سے بھیگ کے ٹکڑے. ایک وقت ہے تو پھر آ جاتا ہے جہاں ان کے مقدار میں یہ نہیں رہتا, پھر وہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتی ہیں, پھر یہ ختم ہو جاتی ہیں. بات ان سے قرآن تو مسلم سب سے بات کرتا ہے میں گزرے نہیں نیبو لا رہے تم فاصلے میں رہو سا بات کو تو متعلق نہیں تھی بڑی عجیب چیز ہے بس کبھی آسان ماؤن یہ معنی نہیں ہے جو ہم نے لاگت کیا ہے اس نے جو آسن ہے اس کا اتباع غیر آسن نہیں ہے اس کے اندر اور چنگے چنگے دیا کرو معاذ اللہ آسن ہے جہاں اللہ جو پرابلم سامنے آتی ہے اس کو لو. پھر قرآن کریم نے جو کہا گیا ہے اس کو پھر دیکھو کہ وقت کا تقاضا حالات کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق جو ٹھیک ٹھیک طریقہ اس کے اندر قرآن میں دیے گئے کتنے طریقوں میں سے اس کو وہاں چاہیے. ہر تنویر ہر تنویر جو ہے وہ ہے ہی حسن لیکن اپلائی کرنے کے لیے اس میں سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے اس کے مطابق اس میں سے اس تنویر کو اپلائی کرو. سینکڑوں دوائیاں ہوتی ہیں یونانی میں تو ہمارے یہاں مقصدات ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں سیب کے سامنے ہوتے ہیں گرم کے سامنے ہوتا ہے ہر دوائی کے اندر شفا ہوتی ہے. لیکن دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ مرض ہے مریض کی جو حالت ہے مریض کی اس کے مطابق ان دوائیوں میں سے ان مقدار میں سے کون سی چیز ہے جو اس وقت آسن ہے. یہ معنی ہے قرآن کی آسن کا استعمال کرنا یہ تدبر کہلاتا ہے. یہ جو حالات جہاں سے تم چلے ہو جیسا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے آج کے حالات جہاں ہم ہیں جہاں سے جب ہم چلیں گے بڑے آہستہ آہستہ چلیں گے. اچھے لوگ ہیں یہ جنہوں نے رپورٹ لکھی ہے, میں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے مبارکباد بھی دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے مگر ایسا آئے گا جیسے رفتار ہماری بڑی سست ہے موجودہ حالات میں وہاں تک جانے کے لیے سست رفتاری سے کام لینا پڑے گا. ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے وسائل کیا ہیں ہمارے تقاضے کیا ہیں اس کے مطابق قدم اٹھانا ہوگا. بات لینا آ جائیے گا کو ہی مشکل آیا کرتی ہے آہستہ آہستہ آیا کرتی ہے نظر آتی ہے کہ وہ آ رہی ہے. اور اکثر و بیشتر قوموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی ہو جاتی ہیں قوم میں اپنی گمرہی میں سورج کے نشے میں دولت کے نشے میں جہاں جو کلاہی آ تو وہ رہی ہوتی ہے تدریج ہی انہیں نظر نہیں آتی. انہیں ایسا پتا چلتا کہ میرے رات تھوڑے بہت صبح ہو گئے. یہ انقلابات آج کل مختلف قوموں میں آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیسے دلتا تن آتے ہیں पचपनी साल का एक घटन है उसका घटन भी स्टेट भी मौजूद है इसलिए अच्छे से चला आ रहा है। हाँ वो प्रेसिडेंट है, हाँ वो भाजपा है, हाँ वो मुंबई है, दूसरे दूसरे उठो मुझे कर सकते छोटे नील तो बड़ी ना इंजन तो मारे ना इंजीनियर अरे खराब तो क्यों लुटा था। ये ममतापन के इनकलाब की शक्लें जो है वो कहते नहीं तैयार करती थी इनकलाब किसी इलाकों के लिए गैस से आता था उठता था वो भर्ती पाकिस्तान से वो गोदाता था आते आते सारी दुनिया को मालूम होता था। तो यहाँ जो आज दौर के अंदर सिपाहियां कौमों की आ रही हैं ये ममतापन आ रही है तुम्हारे शहर में भी ये बात न होगी ये कहाँ की सफाई आ रही है झूठ पाया सफाई आएगी याद रखो। आपको फिर ऐसी बात ना हो जाए कि आए फिर तुम्हारी हालत ये हो जाए अंत पूर्ण नफ्स या हसरता आया मा पर रब उसकी गंदिल्ला है वहीं कुन तो लवे नखाखरी वहाँ फिर ये सबसे अफसोस तुम मरो दांत में उंगली लो और ये कहो क्यों हो। मैंने वाकई खुदा के निजाम की तरफ जाने में बड़ी कमी की और मैंने उसका मजाक उड़ाया। ऐसी चुप्पन वाले मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं मजाक उड़ाया हरानी लखन तो मिलल मुक्तकी क्या ये कहो हदायतारे देनी थी वही दिया करता है वो मुझे अगर हदायत दे देता है तो मैं भी बच जाता हूँ। हदायत तो हमने तुम्हें पेश कर दी हमने तो रास्ते की आवाज दे दी थी तुम्हें ये तो सही है सही रास्ता ये तुम कैसे कह सकते हो। यानी हर सब्जेक्ट का इस्तेमाल है कुरान कर रहा है। मैंने आपको बताया कि कुरान ने बताया है कि कौमे उस वक्त तक पता नहीं होती जब तक दो बातें ना हो जाए एक तो ये कि उनमें कुरान के निजाम या असूल या कवानीन या अख्तार से समझने की सलाहियत हो और दूसरे ये कि उन तक ये चीजें पहुंच चुकी हुई तो ये जो चीज वो कह रहा है ना कि मुझे अगर हदायत होती तो हमने पहले तुम्हें दे दिया था फिर तो ये है इस तरफ आ जाओ तुम ये नहीं कहता मुझे कि हमें बताया नहीं गया था फिर रास्ता कौन सा है। बाकी कौमों के मुताबिक तो मैं नहीं कह सकता कि वहां तक ये बात पहुंची है या नहीं। हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो तो ये रास्ता जो उसने बताया हुआ है ये चीज है कि वो राष्ट्रीय अधीयत चीज को हम नहीं ले रहे लेकिन जितना दोहराते हैं इस चीज को दुनिया में कोई भी मौजूद इतना नहीं दोहराता अपनी किताब को जितना हम दोहराते हैं इस तरह कैसे कह सकते हैं कि हमारे सामने से ही रास्ता नहीं आया था बहुत अचूल अभीना तरल आजाद लो अन्ना ली कर रहा तम को अकून मेरे ये यार ये तुम ये कहो आपको देख के बारे बुलाया फिर मौका और दे फिर देख हम कैसे अच्छे काम करते हैं। कुरान ने हमारी बात ये बड़ी अहम चीज है जो मैं अभी करने लगा हूँ मौका जब मिले यानी ये एक अहम चीज है अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आए तो सीमत सुन लो नॉन मिस दिस कहता है कि जिंदगी में मौके आते हैं तुमने खुद तो उस मौके से फायदा नहीं उठाया और अब कहते हो कि शायद दोबारा उसी किस्म का मौका अगर मिल जाए तो देखो हम क्या करते हैं। कुरान कहता है तारीफ का धारा पीछे की तरफ नहीं पलटा करता जो पानी बह गया पुल के नीचे से ये इसमें एक अहम चीज भी है जो कही गई है। हर एक की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आती हैं उन्होंने मिस कर दिया थे और मिस करने के बाद आश्रम में हर एक हमने किया था कि साहब अगर एक दफा और उसी दिन मुझे हाल आता लेकिन फिर देखो मैं क्या कर सकता इतनी बड़ी चीज कुरान ने कही सब कृष्ण की जो आती है उसी को पकड़ो उसे ना मिस करो आज में हजार ये कहोगे ये तो दोबारा नहीं हुआ है तमाम जितने असूल हम ध्यान कर रहे हैं ये सारे तुम्हारे सामने आ गए तुमने इसकी तकवीर की आपको कहूँ मैंने बताया था तकवीर की क्या माने होते हैं एक तो बात होता है कि इंतजार कर देना कि मैं इसको सच्चा नहीं समझती हूँ ये है जो कहते रहना कि हाँ सर खुदा का कलाम है बिल्कुल ठीक है इसी में आएगा सब क्या करना उसके खिलाफ इसे तकलीफ कहते हैं बहुत आया तुम्हारे सामने आ चुकी हुई थी तुम कह सकते कि हमारे सामने ये रास्ते का निशान नहीं आया था रास्ते का निशान मौजूद था तुम खुद उसी तरह करने के था वो तुम्हें इधर नहीं आने देता था ये सारी चीज थी इस एतबार से तुम दोनों ही इंकार करने वालों में से हो गए ये दोनों हो गया तकलीफ भी हो गई और नशा कुत ने मस्ती से जो किसी ने लापरवाही बरती वो भी कुछ हो गया شراب دیکھیں گے جسے کہتے ہیں کہ وہ منہ کالا ہو گیا اس کا ذلت کے معنی ہوتے ہیں یہ کس قدر جن کی تذلیل ہوتی قوموں کے اندر یہ کیسی زہیر قوم شمار ہوگی اس کے اندر میں آپ پھر اس کے بعد دیکھو گے تم یہ قومیں جو ہیں تباہی کے جہنم میں ہوں گی یہ بھی جو بیچارے ضعیف ناتواں اور متقبرین ان کی جیسے قوت کے نشے میں ان کی بھی کیفیت ہوگی موجودہ جینا ان مزید تقوا کے مفاد سے ہی ان کے برس وہ کہ جنہوں نے پھر اس نظام کو اختیار کر لیا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے یا ہدایت دی ہے یا رہنمائی دی ہے انہیں ہم محفوظ رکھیں گے اس صلاحی سے تھوڑا سا سختی ہے دو لفظ آ گئے ایک تو ہے نجات کا لفظ دنیا کے ہر مذہب میں نجات کے معنی ہوتا ہے کہ آدمی پہلے ٹھیک سے بڑا ہو پھر اس کی مصیبت کے پاس جائے پھر اس مصیبت سے اس کی نجات ہو جائے ہمارے ہم یہی کہتے ہیں اس نجات سے چھٹکارا ہو جائے اور مذہب کا آسن بھی بتایا گیا یہ ہوا ہی کیا صحت مند بچار کو بخار ہوا دوائی دی شام کو 4 بجے کے نارمل ہو گیا تو یہ ایسا ہی ہو گیا نا جیسا سارا سلسلہ رسو و ہدایت تحریر کائنات انسانوں کو بنانا بھیجنا ہم کے اکرام کو اگلی دنیا آپ سارا سارا اس لیے کہ ایل جی ور ہو جاؤ چھیڑ گیا سواگر کیا ہوا گیارہ پہلے کا ویکسین ہو گیا یہ درمیان میں آگا کیا کیوں اور کروایا کیا انسان نے اس کو آتے اس کو کیا ہوا کیا جن دنیا کے مزاج ہے ان کے اندر نجات کا یہی تصور ہے کے اندر ہر انسانی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اپنے ماں باپ سے دشمنی ملا تھا اپنی चीज का लाभ से आता है या मुनाफा होता है। और उसके बाद इस दुनिया में उसका काम ये है कि वो किसी तरह से वो लाभ बोझ को अमल से नहीं जोया जा सकता, अगर से मसीह के कफारे से जोया जा सकता है। वो क्या हुआ उसके लिए, पहले तो खुदा ने मसीह भेजे जो दाग थे गुनाहों से आलूदा, उन आलूदगी होने की किसी को बाकी नहीं थी। कहा करता हूँ आकलता ईसाइयों के इतबार की रूह से वहाँ से अलमिया बैठे अपने बेटे किया कि उनकी चली जाए आप बैठा है, तो ये तो सारे कितने इंसान ज्यादा हो रहे हैं, वो सारे सारे गुनाकार ज्यादा हो रहे हैं, सारे जहन्नम में चले जाएंगे। तो मेरे कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आप मुझे भेज दीजिए खरीद दे देंगे, मेरा खून आज होगा ना उसके सबके में आप इंसानों को माफ कर दीजिएगा। उन्होंने कहा वाह वाह जी जा रहा हूँ बैठे हम आया ना मैं, तो इस तरह से वो जो कुफारा है कुछ नसीह का वो इनको निजात देगा इन इंसानों को, उससे जो वो लायक चेक किया है ने कहा कि ठीक है साहब उसको जाएगा कि चंद दिनों के लिए जानने में जाएंगे, वो उस वक्त बंद करते हमारे इन बड़ों गुरु को पता नहीं चलेगा कि हमने ले गए या कुछ हवालात में नहीं थे, उन्होंने सामने तो बंद करवा दिया होनी थी। वो जितने दिन उनको जाएंगे ना ये पता लगने के बाद हमारे खाने में वहाँ का बन जाएंगे फिर वहाँ से कुछ बचेंगे हम। हिंदू ने कहा जो बचेंगे बदला होता है कुछ सूअर को कुत्ता सूरज वगैरह जितने जन्म जो था उससे बुरे कर्म उनकी तलाश में ये चीज को करके लेता है, जिसमें ये पता हुआ है ये चक्कर होंगे 36 करोड़ उस 36 करोड़ चक्कर के बाद ज्यादा पहली दफा पैदा हुआ था ना ऐसा ही हो जाएगा। हाँ ये काम के कर चढ़ने का नहीं देते सारे, फिर वैसा ही हो जाएगा। हमारे यहाँ भी निजात का यही तसव्वुर है, बात छोड़ दीजिए जिनको जन्नत में जाना भी है ना, तो उस जन्नत में जाने के बाद लाभ होगी वहां से और फिर उसके बाद सारे जन्नत में आ जाएंगे उसके बाद के जरिए से। और हमारे यहाँ के जालसूफ बड़े बड़े हैं साहब, वो सुना चाहिए है कि जैसे वो धोबी कपड़े को कच्ची में चढ़ा देता है ना ताकि उसकी लहल लहल कट जाए और उसके बाद फिर वो प्रकाश हो जाए, बस ये है सारा जन्म से ये कहते हैं। एक और थे उन्होंने कहा डोरियम है तब सबके मरीजों से छठे जाएंगे जन्म के राज होंगे साथ इसकी बात हुई है नजात सुनाने सुना जैसे पहले था वैसा हो गया। कुरान ने गलत किया अजीब तो कुछ न किया ना, एक लफ्ज है अजीब जुबान का सेल्वेशन में अचीवमेंट कोई नहीं होती, ये सारा पिछड़ा इसलिए होता है कि जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। कुरान ने इसके लिए बात लफ्ज कहा है अचीवमेंट इसका तर्जमा है अजीब, इन कवानीन से इतिहास से इनकी अकायद से इस निजाम से अचीवमेंट होती है, अचीव करता है कुछ एलिवर नहीं होता, वो अचीवमेंट होती है। लाजम उसको हम उसको आदत ये होती है उसकी ये नामदारियां वगैरह जो है उसको छूती नहीं हम ये खत्म किया था। ये उनकी बात भी बड़ी अजीब है, दिल की मैं तर्जमा किया करता हूँ, वो जो अफसुर्दगी छा जाती है इंसान के ऊपर हुस्नों मिलाज हमारे यहाँ भी बोलते हैं अरबों के यहाँ उनका रब संगठनों में से इस्तेमाल करते थे काम कर तो इस्तेमाल करते थे कि शाम के वक्त मजदूर घर आए और बच्चों के पास खाने को ना हो तो जो उसकी आदत होती है उसे हुजूर कहते हैं, हुजूर किसी को नहीं होगा। अल्लाह खालिक कुल शय वहुवा अला कुल शय वकीर, आप सोचो पैदा कर दे वो और फिर उनको फरमाने परवरिश ना दे ये खुदा होने वाली बात है। आप तो अपने मुलाजम को रोटी पे रखे, उसे रोटी ना दे दो वक्त के लिए, आप अंदाजा लगाइए माजरे में क्या कहलाते हैं। खालिक को कुछ नहीं है, किसी ने अपने अपनी पसंदीदगी से मर्जी से इख्तियार से चॉइस से ये नहीं कहा कि मुझे पैदा कर, ऐसा हमने किया था, जब हमने पैदा किया था हमारी जिम्मेदारी है वकालत भी होती है, जिम्मेदारी होती है किसी चीज की देने की, भरोसा कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं इंसानों से, जब वो इंसानों के बनाए हुए निजाम के ऊपर भरोसा कर लेता यहू बी रुस्तमाबाद वाला कायनात की पत्तियों बुलंदियों में जितना भगवान शुमार है उसकी चाबियां उसके हाथ में रहनी चाहिए, इंसानों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। खुशू से आ गया चिल्लाए बुझाए फिर जो इससे इनकार करते हैं नुकसान उनसे होता है, घाटे में वो रहते हैं। एक आयता और आ जाए तो फिर दूसरा मुंह छोड़कर दो एक मिनट कुल अफ़ाहिर अल्लाह है सामुन्नी आबुदु अय्योल जाए दोन बोल दोगे जो इन हदीस को से वापस नहीं, तुमको इस रास्ते वाले पे जाहिर है तुम क्या मुझसे यही चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह ही गलत रहा हूँ कि इसको चल जाए कुछ ना तुम ये तस्वीर ना करे जाहिर है क्या बात है सर और हमने तो भाई के लिए तुम्हारी तरफ भी की तुम्हारे से पहले भी हमने भी उनकी तरफ भी सही की हर कौन को हमने सही रास्ता दिखाया है वाला सकून जी अगर खुदा के निजाम के साथ तुम दूसरों के वजह से रिश्तेदारों को भी मिलाओगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नहीं की उसको सिंपल छोड़ दो उसने क्या साजी करो उसके अंदर अच्छी तरह से मिलाए हुए निजाम और कानून को भी साथ से मिलाओ सारे हमारी मदद हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएगा कितना खुदा का वो निजाम को सब हमने लिया है उसको मिल जाएगा और बाकी दूध का गारत हो जाएगा, सिर्फ तो चीज ऐसी है और दूध की एक कढ़ाई के अंदर एक ठेकम दही का दे दिया जाए सारा दूध फट जाता है, भी नहीं तो है या शराब का खाना बन जाए या बोला अच्छा चला जा बन मोहम्मद खबर सुकून अल्फा शरीफ मानुसान करोगे सुकून शरीफ सिर्फ उसके निजाम की हदायत कर और देश तेरी बछरी छिना दूध दे दी वो बकरी दूध के कुछ खुद से फट रहे खुद से फट रहे देर देर हाँ और आगे है वमा कदरुल्लाह हक्का कदर ही इतने खुदा के होटल में कभी सही अंदाजा लगाया ही नहीं, ये बात भैया हम क्यों हो गए जाने वाले इससे हम आएंगे लेंगे सूरह अज़ुमर की आयत छियासी तक हम आ गए हैं कसरत से आइंदा लेंगे तस्वीर मिलना इन मकान तस्वीर लगी ये शिक्षक ने मुझे और भी एक कंसर्ट दिया है वो कमी न दिए एक कंसर्ट कहते हैं और भी आ गया ये भी आ रहा है वो पहला बताने